नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। राजधानी दिल्ली में आज रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज संस्कृत दिवस पर लोगों को बधाई दी और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान 19 घंटे से ज्यादा अवधि में विधायी, वित्त और जन कल्याण से जुड़ी विषयों पर व्यापक तथा सार्थक चर्चाएं की गईं। राजधानी के जैतपुर स्थित हरिनगर क्षेत्र में दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी में एक ड्रग कंट्रोल का भंडाफोड़ कर करीब 9 किलोग्राम से अधिक मनोरोगी पदार्थ जब्त किया। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी दिल्ली में आज रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की, तो भाइयों ने भी बहनों की सदैव रक्षा करने का संकल्प लेते हुए सौभाग्य की शुभकामनाएं दी। बहनों ने भाइयों को मिठाई खिलाई और भाइयों ने बहनों को उपहार भी दिए। भाई बहन के अटूट स्नेह का त्यौहार राखी भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। रक्षाबंधन के अवसर पर कई दिनों से बाजारों में रौनक लगी हुई है। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनिवास में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने लोगों को बधाई दी और कहा कि राखी का पवित्र धागा सभी को आपसी प्रेम और सम्मान से जोड़ने और लोगों को महिलाओं की गरिमा की रक्षा और सुरक्षा करने की प्रेरणा देने का काम करता है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन की बधाई देते हुए लोगों से इस मौके पर साझा संकल्प लेने का आग्रह किया, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके। वोकल फॉर लोकल पहल का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने इस रक्षाबंधन पर अपने प्रियजनों को स्वदेशी उपहार भेंट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये केवल उपहार नहीं बल्कि देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर आपका सशक्त योगदान है। स्वदेशी उत्पाद न केवल रिश्तों को विशेष बनाते हैं बल्कि स्थानीय कारीगरों, लघु उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूह को भी सशक्त बनाते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज बारिश के कारण NDMC क्षेत्र में संभावित जल भराव की स्थितियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण अभियान की शुरुआत कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल से की गई और पूरे परिषद क्षेत्र में जल भराव के कारणों की सघन समीक्षा की गई। इस दौरान श्री चहल ने कहा कि नगर पालिका परिषद की प्राथमिकता है कि आज लोग रक्षाबंधन का त्यौहार खुशी से मना सके। उन्होंने बताया कि त्यौहार के मौके पर इस क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि निरीक्षण के दौरान सिविल इंजीनियरिंग विभाग, विद्युत विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग समेत NDMC की पूरी टीम मौजूद रही और जल भराव की संभावित समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया।
आज NDMC के हम सभी साथीगण कल रात से सतर्क हैं, एक ही संकल्प के साथ हैं कि वाटर लॉगिंग को नहीं होने देना। हमने इसके लिए मेजर्स लिए, ये वाटर पंप को लगाया, ड्रेनेज सिस्टम को भी जहां कोई कमी रह गई थी बीच में उसको क्लियर करा। हम दिल्ली में विकास के लिए आए हैं, माने प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत की, विकसित दिल्ली और विकसित NDMC टीम एफर्ट में, चाहे NDMC हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे MCD हो, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पूरे NDMC क्षेत्र में आप कहीं पर भी जाएंगे आपको वाटर लॉगिंग नहीं मिलेगी। ये विश्वास और संकल्प दिल्ली की जनता के साथ हमारा है और हम वचनबद्ध है कि नई दिल्ली क्षेत्र में कहीं पर भी जल भराव नहीं होने।
श्री कुलजीत सिंह चहल ने सभी विभागों को बारिश के दौरान सतर्क निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। नागरिकों और आगंतुकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए उपाध्यक्ष ने विभागों से किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के अनुसार इस वर्ष देशभर में राखी के त्यौहार पर लगभग 17,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। वहीं लगभग 4,000 करोड़ रुपए की मिठाइयां, ड्राई फ्रूट, फल और अन्य प्रकार के उपहारों की भी बिक्री हुई है। भाजपा सांसद और व्यापारी परिसंघ के सचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि सारा व्यापार भारतीय वस्तुओं का ही हुआ है, इससे भारतीय बाजार और भी मजबूत हुए हैं। वहीं मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए कल व्यापारी परिसंघ के नेतृत्व में देश भर के व्यापारी संगठन भारतीय सामान हमारा स्वाभिमान राष्ट्रीय अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही कल से 15 अगस्त तक देश भर में तिरंगा उत्सव भी मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत बाजारों में दुकानों पर तिरंगे झंडे लगाए जाएंगे तो वहीं बाजारों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज संस्कृत दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत ने न केवल भारतीय संस्कृति को आकार दिया बल्कि विश्व भर में ज्ञान के विविध क्षेत्रों में अहम योगदान दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि प्राचीन ग्रंथों और विज्ञान के अद्भुत दृष्टिकोण को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह दिवस लोगों को अपने कर्तव्यों और संस्कृति की ओर सहेजने और संजोने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी से अपील की कि संस्कृत को और अधिक प्रोत्साहित करें ताकि ये भाषा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर बनी रहे। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मिश्रा ने कहा कि आदिवासी समुदाय जल, जंगल और जमीन के संरक्षक हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि जनजातीय लोगों की परंपराएं, संस्कृति और जीवन शैली प्रकृति के साथ संतुलन का अद्वितीय उदाहरण है। श्री मिश्रा ने बताया कि जनजातीय समाज की समृद्धि ही देश की असली शक्ति है। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कुल 19 घंटे 40 मिनट की अवधि में विधायी, वित्तीय और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर व्यापक तथा सार्थक चर्चाएं की गईं। विधानसभा सत्र की जानकारी देते हुए अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि नियम 280 के अंतर्गत कुल 171 विशेष उल्लेख सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से 62 विषय सदन में उठाए गए। इस सत्र के लिए 28 जुलाई को सदस्यों को समन जारी किया गया था और बैठकें 4 अगस्त से 8 अगस्त तक 5 दिन चली। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिल्ली के नागरिक, प्रशासनिक और नीतिगत मसलों से संबंधित इन विषयों को भेजकर 30 दिनों के भीतर उन्हें उत्तर देने के निर्देश दिए गए हैं।
8वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता विधेयक 2025, दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 तथा दिल्ली माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 शामिल थे। दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक को शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रस्तुत किया तो वहीं दिल्ली माल और सेवा कर के दोनों विधेयकों को वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया। इसके अतिरिक्त नियम 114 के तहत सदन में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता सहित अन्य विषयों पर 20 सदस्यों ने चर्चा की। दूसरी ओर नियम 54 के तहत मुस्तफाबाद स्थित अस्पताल के पुनर्निर्माण और शहर में जल संकट के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। फांसी घर मामले पर गहन चर्चा और पक्ष विपक्ष के बीच काफी गहमागहमी हुई। फांसी घर का बोर्ड हटा दिया गया है और सन 1912 के नक्शे के अनुसार इसके ऐतिहासिक स्वरूप टिफिन कक्ष के नाम का बोर्ड पुनः स्थापित कर दिया गया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण अभिलेख और प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गए। इनमें वित्तीय और विनियोग लेखा वर्ष 2023-24 तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की वित्त, विनियोग लेखा, राज्य वित्त और भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण पर रिपोर्ट शामिल थे। निर्माण श्रमिक कल्याण पर CAG की रिपोर्ट को आगे की जांच के लिए लोक लेखा समिति को भेज दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री गुप्ता ने रेखांकित किया कि इस सत्र ने न केवल महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को आगे बढ़ा दिया बल्कि पारदर्शी, जवाबदेही और ऐतिहासिक सत्यनिष्ठा के मूल्यों को भी कायम रखा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज अगस्त क्रांति दिवस पर अमर वीरों को नमन किया जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान निछावर किया। श्री गुप्ता ने अगस्त क्रांति के इतिहास को याद करते हुए बताया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक क्षण बना। इस आंदोलन ने अंग्रेजों के शासन की नींव हिला दी और पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का संकल्प लेने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राजधानी के जैतपुर स्थित हरिनगर क्षेत्र में आज एक दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी। श्री बिदूड़ी ने बताया कि पीड़ित निजी जमीन पर झुग्गियां बनाकर रह रहे थे और एक समाधि की दीवार गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। भाजपा सांसद ने प्रशासन से हर संभव सहायता देने का अनुरोध किया है। राजधानी के शाहदरा के पास आनंद विहार क्षेत्र में आज एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में अन्य 10 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जारी है। दोपहर करीब 12 बजे आग की खबर मिलने के बाद दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी में एक ड्रग कंट्रोल का भंडाफोड़ करीब 9 किलोग्राम से अधिक मनोरोगी पदार्थ अल्प्राजलोम जब्त किया। जांच के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और अपराध में प्रयोग की गई एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार बरामद ड्रग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए है। अल्प्राजलोम का उपयोग आमतौर पर घबराहट और चिंता के लक्षणों के रोकथाम के लिए किया जाता है, परंतु कुछ गैर सामाजिक तत्व और भटके हुए युवा इसका दुरुपयोग नशे के लिए भी करते हैं। अल्प्राजलोम का इस्तेमाल केवल डॉक्टर के निर्देश पर ही करना चाहिए, अन्यथा इसकी लत लग सकती है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे दिल्ली पुस्तक मेले के 4थे दिन आज बारिश के बावजूद भी लोगों की भीड़ देखी गई। मेले में विविध विषयों पर भारतीय पुस्तकों का एक विशाल संग्रहालय प्रस्तुत है। ये मेला व्यावसायिक लेन देन, नए संपर्क स्थापित करने से प्रकाशन व्यवस्था, अनुवाद, कॉपीराइट व्यवस्था और पुरानी दुर्लभ पुस्तकों के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। इस दौरान कई सम्मेलन, पुस्तक विमोचन और लेखकों से भेंट करने के कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विक्रेता और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सदस्य मोनिका शर्मा ने बताया कि मेले ने उनके संस्थान को लोगों के बीच अध्यात्म और योग का संदेश देने का अवसर दिया।
जो उद्देश्य लेके आए थे, उद्देश्य था कि लोगों को इस संस्था का जो भी अब तक अपरिचित रहे उनको मिले एक परिचय और राजयोग के बारे में वो सीखे आके। तो हम लोगों ने बुक्स के साथ साथ यहाँ पे एक 3 मिनट्स मेडिटेशन का एक छोटा सा वीडियो भी उनको एक्सपीरियंस कराने के लिए जो लैपटॉप हमने रखा, तो वो उद्देश्य हमारा काफी हद तक यहाँ पे पूरा होता हमें दिखा, क्योंकि लोग आए, वो बैठे, एक्सपीरियंस करके गए एंड उन्होंने बहुत पॉजिटिव फीडबैक शेयर किए हमसे।
मेले में आने वाले पुस्तक प्रेमियों के बीच भी काफी उल्लास देखने को मिला। मयूर विहार के पंकज ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुस्तक मेले के माध्यम से उन्हें कला और मनोविज्ञान की प्रसिद्ध किताबें मिली जिनमें उनकी गहन रुचि है।
मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट की बायोग्राफी पढ़ी है, उनकी जर्नी और जिस तरीके की उन्होंने आर्टवर्क्स बनाए हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, मतलब उनसे इंस्पायर होकर मैंने बहुत सारे आर्टवर्क्स भी बनाए इनफैक्ट। तो ये सब बुक्स बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं एक क्रिएटिव स्पार्क को जगाने के लिए। मैं वीडियोज के ऊपर हमेशा बुक्स को प्रेफर करता हूँ।
दिल्ली पुस्तक मेले का विषय इस वर्ष पुस्तकें और प्रकाशन, बहुभाषी भारत का भविष्य है। आगंतुक इस मेले में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक जा सकते हैं और अपनी मनपसंद पुस्तकों को खरीद सकते हैं। कल मेले का अंतिम दिन है। राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज दिन भर मध्यम से भारी वर्षा हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। इसके कारण शहर का प्रदूषण भी काफी कम हो गया, जो आज शाम 4 बजे तक 81 के वायु गुणवत्ता सूचकांक EQI के साथ संतोषजनक श्रेणी में है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 7.8 डिग्री कम 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री कम 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी दिल्ली में आज रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज संस्कृत दिवस पर लोगों को बधाई दी और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान 19 घंटे से ज्यादा अवधि में विधायी, वित्तीय और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर व्यापक तथा सार्थक चर्चाएं की गई। राजधानी के जयपुर स्थित हरिनगर क्षेत्र में दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी में एक ड्रग कंट्रोल का भंडाफोड़ कर करीब 9 किलोग्राम से अधिक मनोरोगी पदार्थ जब्त किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।